आप अपने पास के आने का काम कर रहे हैं। आरोप खड़े प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए आई आप ढूंढना क्यों है सुंदर पानी निकलकर धन में प्रभावित हो रहा है वह उभर रहे चंद्र अपने किरणों से पुरुष निकाल अपनी चेतना के मुख को अपनी से शोकों अलग हो गया है क्या क्या करें क्या करें मैं भगवान हूं इसे मुझे दर्शन करने के लिए आई उनका जो मैं सुन आप लोगों ने सुना कृष्ण ने कहा मृत्यु का कर्म धर्म है सभी की सेवा लग रहा हो क्या हो जैसा कि हो मृत्यु का कर्म धर्म है पति की सेवा पाप कमाता है या नहीं कमाता लग रहा है पिता है कोई है जैसा स्त्रियों का पति की सेवा करना ही उनका कर्म है इसलिए आपको घर में लौटना है और आप लोगों ने सुना ये भी सुना रात भर चांदनी है आप लोगों को यहां कहां से ना चाहिए रखनी है आपको घर में लौटना ये दो बातें कृष्ण ने कही उसका उत्पन्न हो जाता है कृष्ण ने तो कहा कि मैं घर में लौट जाओ और फिर कह रहे मतलब वो यहां साथ में रहो तब सुगन हो गए तो ये कृष्ण ने कौन सी बात करी कहा तो यही कि घर में लौट जाओ पत्नियों की सेवा करो किंतु उस बूढ़ उद्देश्य है ये कहा नहीं कि उसको समझना है वो जो समझना चाहिए उन्होंने कैसे तरीके से कहा अरे कहा आप कहेंगे घोर रात्रि है तो घोर रात्रि कहा है घोर चंद्र तो है और अघोर का पद अनिश्चयता अरे वास्तविक यहां पर था ये उसका अर्थ समझना जो उसमें खलकता है कृष्ण ने ये नहीं कहा किसी को समझना जब हम किसी को किसी बात को कह देते हैं स्पष्ट नहीं उसमें अर्थ नहीं लगता कोई आदमी किसी सभा के पास में गया मैं चल गया बड़ी भूख रही घर जल्दी खाली हो रहा और वो बाजार से ले आया मिठाई उसने भाई मेरे लिए क्यों ला रहे नहीं आपके लिए नहीं आया है किसके लिए ला रहे ठाकुर जी का भोग के लिए ला रहे फिर बात करते जब वो खा रहा है तो उसमें प्रीति है और स्पष्ट कर देता है तो प्रीति है इसलिए कृष्ण ने जो कहा उसके दो अर्थ है एक अर्थ है तो मन जाओ और एक अर्थ है घर जाओ ऊपर से जीता है घर जाओ जीता से अर्थ है इन रूप में समझे क्या करना ऐसा नहीं कि तुमने में दोनों बातें की तो कभी इसका समझ देते हैं रात के पीछे से आ जब पत्नी को तुमने लौटा किसी को भी ग्रहण किया जब पत्नी त्यागी दी थी कितनी भी लोगों को क्या लक्ष्मी को लौटा किया अभी तक देश भर में तपस्या कर रहे हैं उनको ग्रहण नहीं किया उनको लोगों ने उनको निरंतर कर दिया कैसे उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु गुरु की पूजा की कैसे तक होती इसलिए हम आपकी पूजा करेंगे और जब नहीं स्वीकार करते हैं तो आपको उसका पाप लगेगा दूसरी बात आपका यह भी कथन है आप कहते हैं नहीं भगवान अच्छा तो मान लिया हम तो नहीं विश्वास कर किंतु मान लिया आप भगवान तो आपने कहा है सर्वधर्म सब भगवान प्रत्यक्षमान एक राम शरण सब धर्म को छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ तो हम तो सब छोड़ करके आपके शरण में आएंगे यदि ग्रहण नहीं करते हैं तो इसका पाप भी आपके ऊपर मत से कर देगा इस तरह से हमको निरंतर कर दिया गुप्तियां इसी तरह की नहीं है बहुत प्रकार की कृष्ण ऐसा किया अब आप कहते हैं तो किसी को निकाल नहीं होगा सतभामा लक्ष्मी को कम प्रेम नहीं है कृष्ण से वहां रास नहीं लक्ष्मी जी को भी कम रुचि नहीं है वहां रास नहीं होगा मंडली पत्र होगा नित्य पुरुष और लाश के साथ में यदि हृदय का रक्त कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, और इस दूसरी को भी उससे भी सुंदर उसमें पंचम स्वर है वो सुंदर उसे, तीसरी को भी उसी को ध्रुव में काम करते हैं और वो हमारा आरोप के साथ है, और उनसे सप्तम सुर में ली जाती है, कृष्ण का है सात गुण का तीन प्रकार से राग कृष्ण ने एक एक गोपी के बीच में एक एक गुण था और उनके हाथों में हाथ मिला करके नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण ने जिस प्रकार से एक माला के हार को बीच में उसके दर्शन है उसी प्रकार से यह राग मंडली में राधा कृष्ण बीच में रहे और जब नृत्य होने लगा ऐसे खूबसूरती के साथ में विचार आरंभ किया जैसे एक अंगारे को जल्दी ही दक्षिण को लेकर के और ऐसे घुमाए तो मालूम होता है कि ये आग का सबसे बढ़िया वो तो उसी जगह आग है घुमा लकड़ी से ऐसे मालूम होता है। इसलिए उसने ऐसी प्रगति से नृत्य किया जिसको जब राधिका की व्यक्ति में गोपियों की तरफ तो उनके पास में और जब अपने तरफ से थे तो अपने पास गोपियों का सौभाग्यवंत था। सौभाग्यवंत किसको कहते हैं? कृष्ण के लिए सौहार है जो पति उसके अनुकूल कार्य करता है, दुर्भाग्य उसकी वो है जो पति उनकी बात को नहीं सुनता है, अजस्त प्रकार की उनकी बातों को सुनने लगता है तो वो सौहागी है, स्त्रियों के लिए यही सौहार है। उन स्त्रियों को ऐसा मालूम हो लोगों को जो कृष्ण मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं और उसी के साथ में नृत्य कर रहे हैं वो देखेंगे, उस समय उनको यह सौभाग्य हुआ व्यवहार हुआ ये कृष्ण हमारे ऊपर रूप में हमारे लिए कर और किसी के नहीं, सबने अलग अलग किसी रूप में देखा है, इसलिए उनको सौभाग्य मालूम हुआ। राधा जी में उन्होंने देखा कि हमारे पास में नृत्य करता है और जब सुधर में नजर गए तो देखा उस गोपी के साथ उस गोपी के साथ उस गोपी के साथ उस पति के साथ नृत्य कर रहे हैं, इसलिए वो हो गया महाजूठा लगा है हो कहा मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूं तो ये सबके साथ में वैसा ही प्यार ना हमारे साथ पशु को हो गया मां हमारे होकर के तुरंत रास्ते निकल गए। कृष्ण ने देखा सब को भूमि सब को भी भूमि है सब कोटि एक्ट ऑफ करोड़ गोपी तो शुक्र के साथ चित्र नहीं था राधा जी चित्र है और वो तो करने के लिए अंतर्ध्यान है और उनका जो मध्य स्वभाग मत उसको प्रशांत किए बिना के रात होगा नहीं और इनको हो गया है मान इस मान को प्रसादन करना है प्रसादन माने प्रसन्न करना है इसलिए वो इसे अंतर्ध्यान है। अब जब अंतर्ध्यान हो गए वो भी हमको खोल दिया कितने तरह के प्रकार की गोली नहीं स्वपक्ष वाली है विपक्ष वाली है तटस्थ है शुभ है चार प्रकार की लाखों करोड़ गोली में से ये चार प्रधान है। राधा जी के जो पक्ष में है वो क्या है तो राधा जी के विपक्ष में है चल राहुल प्रवृत्ति तक क्या करना ये विपक्ष की राधा जी के भाव का है पूरा भाव नहीं है भाव में का तात्पर्य क्या स्वपक्ष और विपक्ष किसको कहते हैं जितने कृष्ण मेरे हैं या मध्य भाव और मैं कृष्ण ही हूं या सत्य भाव विपक्ष समाप्त करना चाहिएगा मैं कृष्ण ही हूं ये चंद्रावली का अधिकार और तीन स्त्री पर कृष्ण मेरे हैं इतना अधिकार ये राधा जी इस भाव की जो निकट है इस भाव में जो है कि कृष्ण ले रहे हैं वे जैसे भाव में उठेंगे बैठने बैठेंगे वो तो स्वपक्ष के और विपक्ष कौन हुआ कृष्ण की मैं हूं इनको दाक्षिण भाव अब ये दो पक्ष हो गए विपक्ष और स्वपक्ष एक हुआ तीन पक्ष है तो मध्य भाव मैं मेरे कृष्ण है किंतु कुछ सर्दियता पर मैं कृष्ण के लिए तीन भी एक बटा चार था और तीन बटा चार का क्या है कृष्ण में, इसलिए राजा जी की ये पक्ष और तटस्थ राधा चंद्राम के जो सुन पक्ष वाले हैं अतः उसमें कृष्ण की मैं हूं ये भी बड़ा चाह रहा है और एक भाव क्या है राधा जैसा कृष्ण में ये हो गई तटस्थ कृष्ण का ध्यान दिए तो जो तपस्वी है वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। कृष्ण के चरण चिन्हों के पास में एक और पूरे चरण में देखा ये तुम्हारे किया जाता है आज उन्होंने राधा जी के चरणों के चिन्हों पर देखा था वो विपक्ष और तत्वी सुनी भाई ये किसका है अब तो इतने ही इसकी आराधना की है अन्यायाग्रम भगवान का जो ईश्वर इसने जरूर ईश्वर की अति की आराधना की है जो कि कृष्ण की शरण में गई है अन्यथा जा नहीं सकती इसलिए वो अत्यंत दुखित हो गई और जो सपक्ष राजनीति बड़ी प्रसन्न हो गई थी किसी से कहा नहीं बस आज हमारी सभी आएगा सौभाग्य मेरा सौभाग्य है जो कृष्ण को भी सत्यम कर इस प्रकार से जो दूसरे पक्ष राजनीति को प्रसन्न नहीं करना नहीं होगा प्रेम से पूछ रही है पदों से पूछ रही है तुलसी से पूछ रही है ये सब का संघा को इन सबको अलग अलग समझ करके समझने में सब यह अच्छी तरह समझ जाए क्योंकि जैसा बहुत दिनों तक की जाए सब यह अच्छी तरह से समझेगा। अभी आप लोग रोज पर कहो या ऐसी कथाएं हम सुने फिर कभी हम लोग आएंगे चिंता करेंगे जो भी कुछ होगा कि बस हम लोग पढ़ेंगे अभी की बात सुनना में चाहेंगे आपको कक्षे में आदि इस प्रकार जो भी होंगे जितने अभी
बातें उसमें से मैं
वृंदावन के रात में शादी रात में गोपियां सम्मिलित हुई, जो कृष्ण की लागू शक्ति स्वरूप श्रीमती राधिका और उनकी काय जीव स्वरूप है, वो तो बिना किसी भी बिना प्रश्न के अनायासम योग माया ने उनको राष्ट्रस्तरी में पहुंचा दिया। उनके लिए कनिक भी कोई विघ्न बाधा नहीं। ये कौन है? कृष्ण के लाडली शक्ति की स्वरूप श्रीमती राधिका, उनकी काय जीवन स्वरूप है। विपरीत जो नित्य सिद्धा है, नित्य सिद्धा नहीं, ये लोग नित्य सिद्धा नहीं है। कौन काय हुआ? उनको सिद्धों की कभी जरूरत नहीं है। वो राधा जी की काय जीवन स्वरूप है, कृष्ण के राधा शक्ति स्वरूप है, सब लक्ष्मय नहीं है, इसलिए उनको सिद्धौने की कभी जरूरत नहीं। जैसे कृष्ण को सिद्ध नहीं कहा जा सकता है, ऐसे मुझे को भी नित्य सिद्धा नहीं कहा जाएगा। जो नित्य सिद्धा है मैंने किसी न किसी समय में वो सिद्ध नहीं है। मैंने साधन किया है, साधन के द्वारा कृष्ण की तो नित्य सिद्धा है, अर्थात जीव तत्व है। वो साधन होकर के भूति भाव में सिद्ध ही लाभ किया है और नित्य है, कभी जगत में आई नहीं। वो लोग देखते, वो लोग भी उनके साथ में सत्य में रहते हैं, इसलिए वो देखते पहुंचे। इन दोनों लोगों के लिए जो माया जी ने ठीक वैसे ही उसकी गोपी बना करके घरों में पतियों के पास में, सास सासुरी के पास में, माता पिता के पास में उनको ठीक उसी प्रकार से अविकल लगा सकता है। जैसे कृष्ण कोटि कोटि गोप बालक बने हैं, बछड़े बने हैं और उनका स्वभाव चरित्र रंग रूप सब कृष्ण ने धारण कर दिया है, ऐसे ही राधा जी ने ही योग माया ने उनका रूप बना करके और घरों में रख दिया। किसी को कोई संदेह न हो कि वो रात में गई और वो प्रकाश में गई, नित्य सिद्धा है। और जो अभी साधन सिद्धाएं हैं जिनकी स्वरूपता सिद्धि हो गई है और वस्तु सिद्धि भी हो गई है, गोपियों के गर्भ में जन्म भी दे दिया है, ऐसी भी गोपियां दो कोटि की हैं, दो उसमें हैं, दो विपक्ष रूपन विपक्ष। एक तो विवाह से पहले या विवाह के पीछे नित्य सिद्धा और काय स्वरूपा गोपियों का संग हो गया और वो संग में उनके भीतर में जो कथा है वो सूची थी वो सब दूर हो गई और पत्नियों के साथ में इनका कभी संगम नहीं है। कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझते हैं और उनको नित्य सिद्धाओं के साथ में पटवार का विवाह कर गोपियों के साथ में संग हो गया है, इनके लिए भी कोई विघ्न बाधा नहीं। वो लोग भी कभी जो मैं इनके लिए सिद्धा होता है। अब साधन सिद्धा में जैसे उपनिषद चली है, उपनिषदों ने साधन भजन किया, जैसे दंडकारण्य वाले साक्षात्या ऋषियों ने साधन भजन किया गोपाल मंत्र और काम बैठने के लिए। इन लोगों में से जिन लोगों को तंग हो गया नित्य सिद्धाओं का अथवा कायदे वालों का, जो मैंने इनके लिए भी दरवाजे खोल दिए, ये लोग भी चले गए। और इनमें से अभी कुछ उतना भाव नहीं है, कुछ थोड़ी सी कसाय मैंने क्या रंग अभी पूरा भी नहीं चला है, अभी दो बार और रंग देंगे, कपड़ा तो साफ कर दिया, अभी गहरा चक्कीदा रंग अभी नहीं आया है, अनुराग रंग उनको और गहरा होना। तो उन लोगों के लिए जो दंडकारण्य निवासी थे, जनकपुर की जो ये सब महिलाएं थी राजकुमारियां, और उनकी शादी हो गई है
पतियों के साथ में उनका संग भी हो गया है, किसी किसी को पति से किसी को उत्तरी संतान भी हो गई है, किंतु कृष्ण के प्रति प्रबल रूप में उर्वर आ गई है, अभी उत्तर सिद्धाओं का भी पूरा संग नहीं मिला है। इसलिए कुछ थोड़ा सा बाकी क्या है, कल शिवानंद ब्रह्मचारी जी ने बताया सबके से समझ, वो दोष क्या है, एक दोष है कुछ सुख है। जब तक हमारे पुण्य और पाप रहेंगे तब तक भगवान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये दोनों देवियां हैं। गोटियों को सुख और अशुभ पाप से जैसी कोई देवी नहीं, वो तो पहले जन्म नहीं हो सब दूर कर करके उसके बहुत ऊपर भाव, उसके बाद में प्रेम भी उनको आ गया, किंतु यह प्रेम अभी परिपक्व नहीं हुआ है, पक भी गया है, पक गया है किंतु अभी खूब कोमल हो गया है, उसमें से सुगंध आने लग गई और उसको देख करके किसी का मन लुब्ध हो जाए, कोयल बैठ जाएगी, अभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अभी थोड़ा सा पकने में पक भी गया है किंतु अभी थोड़ा सा भी और नरम कोमल होना चाहिए, उसमें सुगंध और मिठास और उसको तोड़ करके घर में लेकर के गर्मी देकर के पका रहे हैं, या ऊपर में ही वो पक रहा है, थोड़ी सी हवा चली और वो क्या होगा अपने वृद्ध से टपक जाएगा, उसमें अत्यंत अधिक माधुर्य हो जाता है, तभी माधुर्य सुगंध और ये सब चीजें नहीं आएंगी। इसलिए इसी को कटाए समझिए, इसी को दो प्रकार से जो किया प्रतिरहता बना दिया ताप हुआ कि जो कुछ कसाय था वो दूर हो गया, छिन्न मंगला और एक है कि यह तीव्रताप झूठा सुखा अशुभ दूर गया, गोपियों को इतना भजन करने पर कोटि कोटि और उनको गोपी तरह से जन्म, अब अशुभ क्या रहा, कर्म जनित कोई अशुभ नहीं, ज्ञान जनित कोई भी अशुभ नहीं, यह अशुभ क्या है, अभी प्रेम के पकने में थोड़ी सी अभी कुछ पक, तो ये तीव्र बृह ताप से जैसे कि ताप देने से अन्न पक जाता है ना, चाहे अन्न में घोर करके रखो या अंदर की ताप से या जैसे बोरे में ढक करके रखो उसको गर्मी चाहिए, तो ये बिरह का तीव्र ताप ने क्या किया, अशुभ जो उसमें कुछ कमी थी उसको उसने किया, और जो सुख थे मैंने क्या, पति बहुत ही उनको प्यार करते हैं, साथ सासुरी और घर वाले बहुत अधिक प्यार करते हैं, तो ये प्यार करना भी बड़ा गड़बड़ी है, राजा मोरे किसी करे ये मोर बनना, संसार वाले लोग प्रेम करते हैं तो कृष्ण के भजन में वो लोग बाधा दें, प्यार करना माने तुम भी हमको प्यार करो, तो उनसे प्यार करो ना भगवान से प्यार करो, तो भगवान का प्यार बढ़ जाएगा, यही बात हुई है महर्षियों में सत्यभामा रुक्मिणी में, पहले उन पर कृष्ण पर अकेला प्यार था, तो उनसे शादी हो गई, तो फिर शादी होने के बाद में जब लड़के हो गए एक लड़का हुआ तो क्या हुआ, अब वो कृष्ण का प्रेम बच गया उस लड़के, एक लड़की हो गई 10 लड़के हो गए और एक लड़की, तो 10 एक 11 भाग और पति में एक भाग और बराबर बराबर 12 भाग, साथ साथ की तो सेवा करनी पड़ेगी, तो देवर हैं और घर वाले हैं, माता पिता हैं, बंधु हैं, इन सबके प्रति भी प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए इनका प्रेम बढ़ जाता है, और गोपियों का प्रेम ठोस सॉलिड, न तो पतियों से संबंध है, न उनको पुत्र है, न वो ससुर ससुर को सब कुछ वो संसार का गुण चुकी है, इसलिए इनका प्रेम एक ठोस है, इस प्रेम के द्वारा कृष्ण बच्ची बोध हो जाए, तो उनका मंगल चाहता है कि सभी लोग उनको आदर कर रहे हैं, अब वो आदर करने चाहिए क्योंकि प्रेती कुछ बची नहीं है, ये जो वहां पर है ये कृष्ण को भीतर ले गई, अभी करके खूब जोरों से आलिंगन किया और उनका मंगल भी क्षीर समाप्त हो गया, जैसे नरसिंह ठाकुर जी ने कहा है हम बद्ध जीवों के लिए जैसे पाप है ना वैसे पुण्य भी, बल्कि पाप से हम लोगों का जल्दी से छुटकारा मिल सकता है। किंतु पुण्य रूपी जो मंगल हुआ है वो जितने संसार की आसक्तियों के रूप में धन जन पुत्र परिवार प्रतिष्ठा मिलने लगी, इसे छूट जाना बड़ा भारी है। यह सोने की देवी है और वो जो है ये देवी है, दोनों को सोना। उस जगत में भी प्रेम में भी जो अटुटी है उन सबका भी सोना है, इसलिए उनके लिए विलंब है। जब ये दोनों बातें हुई, विरह के प्रताप और कृष्ण को हृदय में लेकर के आलिंगन किया, उनका प्रभाव दूर हो गया। मरी नहीं, देह को त्याग कर दिया, उसमें लिखा है किंतु माने क्या, भाव को त्याग कर दिया। भाव को छोड़ना अभी महत्वपूर्ण है न शरीर को छोड़ना। हम लोग शरीर को छोड़ सकते हैं किंतु काम को लोग सकते हैं शादी, ये सूचना बड़ा कर सकते। शरीर छोड़ देंगे दिन काले में लेते जिसे दिन जाएंगे मर जाएंगे, किंतु आसक्तियों को छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए यहाँ पर भाव जो है, भाव परिपक्वता में जो मधुर भाव में आने में कुछ असुविधा थी, उस भाव को छोड़ दिया। ये ताकत शरीर को भी छोड़ दी मर जाती ना तो कैसे होता, वो अमंगल हो जाता, मरना तो अमंगल है और उनको मरने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गई, जन्म मरण से भी असिद्ध हो गई, इसलिए शरीर को नहीं छोड़ा। बहुत से लोग कथावाचक लोग ऐसा सुनाते हैं कि ये काम की वहां पर। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, रात आती रात समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद में ब्रह्मा जी की आयु से कितनी रातें उसमें लगी हुई वो सब समाप्त हो, ये घर में लौट। जब घर में लौटी तो उसके लिए एक श्लोक लिखा है, फिर उनका संसार नहीं हुआ है। मतलब क्या, संसार में न तो उनकी आसक्ति हुई और न संसार हुआ मैंने, अब जन्म मरण उनका दूर हो गया है। क्यों, वो क्या जन्म मरण वाली है न तो उनको संसार की होगा, तो ये क्यों आया। वहां पर ज्ञानी कर्मी जो भी लोग बैठे थे उन लोगों के लिए यह कर दिया, वो लक्षण है गोपियों के लिए ये नहीं। गोपियां तो प्रेम की परिभाषा में है, उनको प्रेम की भी जरूरत नहीं, वो तो स्वाभाविक उनमें प्रेम है, इसलिए उनको कुछ सिद्धि सिद्धि नहीं करना है। इसलिए उनको संसार नहीं, वो यदि कहते हैं तो ये भूल है, संसार की जरूरत है, ऐसा नहीं। इसलिए गोपियों का संसार नहीं माना है, यदि ऐसा कोई समझता है तो गोपियों के चरणों में अपराध करता है, इसलिए ऐसे इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। व्याख्या क्या होगी, दूसरों के लिए कर्मी जो भी ज्ञानी बैठे हैं उन लोगों के लिए। और यहाँ पर वो गोपियां राक्षस खड़ी के बाद में अपने घर में भी नहीं गई, कहा रही धंधा बनके कुंजों में रहने, जब उठाव आए तो इसको पता चला। गोपियां घर में उद्धव से नहीं मिली, वो कहां मिली, नंद गांव के वो उद्धव प्यारी रूपी कुंज में मिली, जहां पर उनको कोई देख ही नहीं सकता था। और उसके बदले जो माया वाली जो गोपियां हैं जिनको बना दिया है उसके द्वारा कथा काम इत्यादि, अब वो उसकी रोटी नहीं पति के लिए बनाने लगी थी, इसका ये सब था। वो पति के लिए दलिया नहीं बनाई, घर में अपने पति की सेवा नहीं कर रही थी, जैसे पहले खाते बजाया इसलिए इनका सब ये जो खाइए ये यहाँ पर दूर दाद पड़ जाए। इसलिए ये नहीं अर्थ लगाना या समझना जो गोपियों का संसार है वो संसार से मुक्त हो गए। मायावादी लोग सब ऐसा ही अर्थ कर करके गोपियों के चरणों में अपराधी हो, इसलिए इन सबका विचार अच्छी तरह से समझ करके इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तीसरी बात सुनाई ने कल समझाया, गोपियां कृष्ण से प्रश्न किया, तो प्रश्न क्या प्रहि कहते हैं, प्रहि पहेली पहली बुझाना, तो गोपियों ने कृष्ण से पहली बुझाई। जब विवाह होता है ना तो जब पति अपने ससुर के घर में विवाह करने जाता है तो विवाह के बाद में उनसे पहेलियां पूछती हैं, तरह तरह की पहेली उसको तंग करती है। यहाँ तक कि पीढ़ी के नीचे मटर का दाना रख देंगे और वे बैठिए आराम से, जहां बैठे तब तक तो वो चला गया, वो नीचे मटर का दाना है ना, तो वो सब करके एकदम बहुत दूर चला गया, उसी बेटी पर सब लोग ताली बजा करके हल ऐसे तो ये प्रहेलिका बुझा रहे हैं। प्रहेलिका मैंने बुझा रही है, मैंने सुन लो पहली बुझा रही है, कृष्ण से उत्तर जा रही है। पहली बुझाया, कभी प्रीति करने वाले को कोई प्रीति करता है? कुछ ऐसे हैं जो प्रीति न भी करें तो भी उसको प्रीति करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो प्रीति करे तो भी प्रीति नहीं करते। तो जो प्रीति नहीं करते हैं उनको क्या प्रीति करें? इसलिए प्रीति करे ना करे उसको किसी को भी प्रीति नहीं करते। आप बुझक्कड़ है जरा बुझाइए तो इसका क्या तात्पर्य है? ये पीछा प्रहेलिका है, इसका मतलब क्या है? आप उसमें से कौन है ये नहीं, इस तरह से नहीं, आप इस प्रहेली को जरा सुझाइए। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, ये पहली और कुछ नहीं, ये हमको पराजित करने के लिए मैं अपने अपना अन्याय मैं स्वीकार करूं, मैंने दोष किया है, ये ऐसे नहीं पूछ सकते, कुछ रूप में पूछ रहे हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं इसका इस पहेली को मैं सुलझाता हूं। जो प्रीति के बदले प्रीति करते हैं उसमें धर्म नहीं है और उसमें सबुद्ध भी प्रीति भी नहीं है। सुनो खूब अच्छी तरह से बैठो, हाथ छोड़ करके ध्यान से सुनने में बीच में पूछ लूंगा कौन ये अच्छा है कौन भी बैठ। नहीं सुनाई पड़ता, जबर हो जाता। तो कृष्ण ने कहा प्रीति करने वालों को जो प्रीति करते हैं इसमें न तो सौजन्य है प्रीति है और न कोई धर्म है, ये तो सीधा सीधी बनियागिरी है, दिया और लिया लेन देन का मामला है, इसमें धर्म है। तो मैं क्या धर्म का व्यापार नहीं करता, तुम प्रीति करोगे इसलिए मैं तुम्हें प्रीति करूंगा। दूसरा, प्रीति नहीं करने वालों को भी प्रीति करते हैं, इसमें धर्म है और सौहृद्य भी। प्रीति नहीं करता है उसको प्रीति करे, तब तो बहादुरी। लड़के बेटे और शिष्य लोग गुरु जी का आदर नहीं करते हैं और पुत्र और कन्या माता पिता की हो सकता है कि वो सेवा न करें, प्रीति न करें, किंतु पिता का और माता का और गुरु का स्नेह रूपा रखता है, उनकी प्रीति रखती है। ये प्रीति दो प्रकार की है, ये भी बतलाया था, प्रीति दो प्रकार की, औपाधिक और निरुपाधिक। किसी प्रकार की कामना न रख करके गुरु या माता पिता अपने संतान पर अपने शिष्यों पर जो कृपा करते हैं स्नेह रखते हैं ये निरुपाधिक के लिए है, उपाधि कुछ नहीं, सकाम उपाधि सकाम नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं कर सकता तभी उसको प्रीति करते हैं, इसलिए निरुपाधि प्रीति। और तो उपाधिक प्रीति बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर जब मैं बुरा हो जाऊंगा हमारा पालन पोषण करेगा या मर जाने के बाद में पारलौकिक क्रिया करेगा और किसी से हमारा वंश चलेगा, इसलिए इसको प्रीति कर रहे हैं। यह साहसिक प्रीति निर्बाधित नहीं, यह उपाधिक प्रीति। तो ये मैं इनमें से दोनों में कोई नहीं, इसमें तुम लोग कौन वो किया, मैं प्रीति नहीं कर रहा तभी तुम लोग प्रीति कर रहे, इसलिए तुम्हारे अंदर में धर्म भी है और प्रीति भी है। जब खास तुम्हें तुम लोग धार्मिक भी हो और हमारे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है या शुद्ध है कैसे जैसे गुरुजन होता है माता पिता का पुत्र होता है उसमें तुम लोगों का सहतुक नहीं है, औपाधिक नहीं है, यह पाधिक सुनो इसलिए पुरुष से दूसरी मैं किसी इन दोनों में नहीं है, न निरुपाधिक हूं ना उपाधिक, माता पिता और गुरु के समान ही मैं प्रीति नहीं करता, उनसे भी थोड़ा सा ऊपर अलौकिक और विकसित रूप से करता, वो आगे बढ़ रहा है। और जो प्रीति नहीं करता, जो प्रीति करता है उसको भी प्रीति नहीं करते, वो चार प्रकार कौन कौन, आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरु गुरु। इसमें आत्माराम, आत्माराम माने आत्मा में रमण करना, उनको संसार कहाँ है, क्या है, कौन माता पिता है, कौन भूजन है, जिनको कोई भी बात कृष्ण में कि उनका लग रहा है उनकी आत्मा कृष्ण में रमण करते, ये आत्माराम। इनको होश नहीं, जैसे सूर्य गुस्सा नहीं है, इनको तन मन का संसार का कोई होश नहीं है, सब समय उनका चित्त भगवान में लगा वो समाधि में, इसलिए वो कोई प्रति करता है कि नहीं करता है वो देखते ही नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है, उनको प्रतिष्ठा से जरूरत नहीं, किसी चीज से जरूरत नहीं है, उनकी आत्मा मन कृष्ण इतने आनंददायक है, पूर्ण आनंद जीते हैं, उसी में रंग रहा है उनकी सेवा में, उनको संसार की क्या जरूरत है, इसलिए आत्मा कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्मा राम नहीं, हम कृष्ण चित्त लगाएंगे, मैं आत्मा राम, यदि आत्मा राम रहता तो तुमको मैं बुलाता क्या, पंडित से बुलाया ना, आत्माराम किसी को बुलाएगा, आत्माराम को भूख लगती है, कहते हैं मुझे मुझे मक्खन रोटी चाहिए, राधा जी पान की बीड़ी दे रही है, उनको जरूरत है किसी चीज की, उनको उनके गुस्सा नहीं की कोई जरूरत, किंतु हमको तो जरूरत है, इसलिए मैं आत्माराम नहीं हूँ, क्योंकि मैं बल्कि मैं तुम लोगों को बुलाया और तुम लोग आ गई, तुमसे बातें किया मैंने, तुम लोगों के साथ में राज किया, तो आत्माराम कहा, और आत्मकाम, आत्मकाम भी नहीं हूं, जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनको आत्मा आत्मकाम, तो मेरी तो कामना भी पूरी हुई नहीं, मैं तो तुम लोगों को बुलाता, तुमको मनाता क्यों, बतलाओ तो क्यों मनाता, यदि हमारी कामनाएं पूर्ण होती तो हाथों में हाथ लेकर तो मैं नीचे क्यों करता, ये राज क्यों किया, हमारे अंदर में कमी है ना, क्या कमी है, तुम्हारे प्रेम की कमी है हमारे अंदर, इसलिए मैं आत्मकाम भी नहीं हूं। अब रह गया अकृतज्ञ और गुरुद्रोहिता, अकृतज्ञ किसको कहते हैं, कृत क्यों, माता पिता गुरुजनों ने और हमारे प्रिय लोग व्यक्ति जो हमारे हैं उन लोगों ने हमारे प्रति जो कार्य किया है, कृत माने अच्छी भलाई परोपकार जो किया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें प्रीति करते हैं, इसको जानना क्यों माने, नहीं जानने का नाम है कार्य सारे, तुम अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं करता, तो माता पिता का हमारे ऊपर में क्या ऋण है, अतो ऋण है तुम उनसे डरते रहा, उनको उन्होंने पालन पोषण किया है, तो किस लिए पालन पोषण किया, किस लिए जन्म दिया, जन्म उन्होंने दिया कि अपने आप ये तो भोगों में भी कैसे मैं पैदा हो गया, इसमें उनका क्या योगदान है, समझ रहे हैं, वो तो अपने सुख में लिखते थे और मैं दूसरे से पकाया, संतान के लिए पड़े कुछ उन्होंने भी बात आदि की, किस लिए किया है, अपने भोगों के लिए, तो वो भोग मनुष्य से मैं निकल आया उसमें से बीच में, तो ये क्या आसान उनका हुआ, कोई ऐसा नहीं, मैया जानबूझ करके अपने पेट के बच्चे को कुछ खिलाती पिलाती पोषण करती है, अरे वो तो प्रकृति से अपने आप हो जाता है, इसमें कैसा उनका भी नहीं हूं, इन सबके का जो कार्य है परोपकार के, उनको विकल्प का टाल करके उसको नहीं मानने का नाम है अकृतज्ञ। कृष्ण कहते हैं कि मैं अकृतज्ञ भी नहीं, जब मैं तुम्हारे सामने आ गया मैं अकृतज्ञ हूं, फिर गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मैंने केवल अकृतज्ञ नहीं, उनके साथ में द्रोहाचरण करते हैं, कैसे द्रोहाचरण करते हैं, सहेतु और अहेतु। माता पिता वृद्ध हो गए और उनको हाथ में रोग हो गया, उनको सर्दी जुकाम हो गया, वो वृद्धावस्था में होती ही है, उनके लिए एक बाहर दरवाजे में घर से तो उन्होंने घर तक तोड़ दिया और बाहर में किसी आने जाने वाले रास्ते पर उनको दे, पिताजी आप यहीं पर रहिए। धीरे धीरे उनका जो कुलदार सब कुछ ले दिया और घर भी दखल कर दिया। पिताजी अब तो आप लोग से अब मेरी नई शादी हो गई, पिताजी ने लज्जा के मारे में अपना घर किसको दे दिया, बेटे को और बहुत को दे दिया, घर पहले उन्होंने दे दिया। इसके बाद में धीरे 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 रुपये पैसे जो कुछ था दायित्व सब कुछ उन्होंने दिया, अब वो घर के बाहर में